इशिका अपने इन्फ्यूजन के लिए हॉस्पिटल जा रही थी। पहले उसे दिशांग से मिलने जाना था, पर दिशांग के कॉल आने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल जाने लगी। रास्ते में इशिका को पार्थ की लेबोरेटरी दिखाई दी तो वो उसके अंदर चली गई। वो देखना चाहती थी कि पार्थ ने लेबोरेटरी को किस तरह डिज़ाइन करवाया है। अंदर जाकर उसे कुछ और भी पता चला। अंदर दवाइयों का मास प्रोडक्शन किया जा चुका था। इशिका ने उनके फॉर्मूले और दवाइयों को चेक किया तो उसने पाया कि ये वही प्रोजेक्ट था जो पार्थ ने पहले उसे दिखाया था। उसमें बहुत से बदलाव भी किए गए थे। ये दवाइयां जहर के अलावा और कुछ नहीं थीं। इशिका ने उन्हें देखा तो वो सकते में आ गई। उसने सिर पकड़कर कहा, तो क्या मिस चौहान बिल्कुल सही कह रही थीं? पार्थ ने जानबूझकर मुझसे प्रोजेक्ट बनवाया था ताकि मेरा नाम लेकर इन दवाइयों को लॉन्च कर सके। वो अभिमन्यु को नुकसान पहुंचाने के लिए आया है और मुझे मोहरा बना रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा पार्थ? हमने तुम पर यकीन किया था और तुमने हमें धोखा दिया। इशिका की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने एक नज़र इधर उधर देखा तो काफ़ी मात्रा में दवाइयां बन चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि बस अगले महीने तक पार्थ उन्हें लॉन्च कर देगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरी वजह से अभिमन्यु प्रॉब्लम में कभी नहीं आएगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। पार्थ, तुमने हमें धोखा देकर सही नहीं किया। इशिका ने तुरंत पार्थ को कॉल किया। पार्थ किसी सर्जरी को डिस्कस करते हुए अपनी टीम के साथ मीटिंग में था। इशिका का कॉल आने पर उसने बीच मीटिंग में कहा, बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आया। इशिका से बात करने के लिए पार्थ मीटिंग को बीच में छोड़कर बाहर आया। उसने कॉल रिसीव करके जल्दी से कहा, इशिका अभी बात नहीं कर सकता, कुछ इंपॉर्टेंट है तो बता दो, वरना बाद में कॉल करता हूँ। अचानक उसे इशिका के सुबकने की आवाज़ सुनाई दी तो वो परेशान हो गया। पार्थ ने परेशान लहजे में कहा, इशिका क्या हुआ, तुम रो रही हो, सब ठीक है ना? इशिका को मुसीबत में देखकर पार्थ घबरा गया था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वो इशिका को रोते हुए तक नहीं देख सकता। कल को उसे अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ी तो इशिका से ज्यादा दर्द उसे होगा। पार्थ अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे इशिका की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी। तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया पार्थ? अगर अभिमन्यु की पोजीशन चाहिए थी तो आकर सीधे सीधे बोल देते, मेरा करियर दांव पर लगाने की क्या ज़रूरत थी? एक बार तो सोच लेते कि मैंने ये मुकाम हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मुझे टारगेट कर रहे हो? इनफैक्ट अभिमन्यु ने भी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर तुम उसे बर्बाद क्यों करना चाहते हो? इशिका की बातें सुनकर पार्थ को झटका सा लगा, वो हड़बड़ा गया। उसने अपनी सफाई में कहा, देखो इशिका, तुम किस बारे में बात कर रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन कर सकूं। एक्सप्लेनेशन तो तुम्हें देनी होगी पार्थ। अगर पहले अपने हिसाब से दवाइयाँ बना रहे थे तो मुझसे प्रोजेक्ट करवाने की क्या ज़रूरत थी? तुम ये जहर मार्केट में लाकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलना चाहते हो। क्या एक पल के लिए भी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि इससे कितने मासूम लोगों की जान जा सकती है? इशिका ने कांपती आवाज़ में कहा। इशिका की बातों से पार्थ समझ गया था कि वो सब जान चुकी है। उसने गहरी सांस ली और सख्त आवाज़ में कहा, इशिका तुम इस वक्त कहाँ हो, मुझे बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ, हम बैठकर बात करते हैं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। अब बैठकर बात करने जितना टाइम नहीं रहा पार्थ, और मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। इस वक्त मैं तुम्हारी लैब में खड़ी हूँ, किसी के कुछ कहने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। इशिका ने जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, उस जगह पर मत रहो, वो जगह बहुत खतरनाक है, वहाँ काफ़ी सारे केमिकल्स हैं। पार्थ ने इशिका को समझाने की कोशिश की। इशिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। पार्थ जल्दी से दौड़कर अपनी टीम के पास पहुंचा और बोला, फिलहाल मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता, इसे शाम तक के लिए पोस्टपोन कर दो। लेकिन सर, पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, हम इसे टाल नहीं सकते, जूनियर डॉक्टर ने कहा। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, बस तब तक सिचुएशन संभाल लेना, अभी मेरा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, पार्थ जल्दबाजी में बोला और अपना ब्लेजर उठाकर वहाँ से जल्दी से जाने लगा। सब लोग पार्थ की तरफ हैरानी से देख रहे थे। पार्थ को उस हॉस्पिटल में ज्वाइन किए हुए 1 महीना ही हुआ था, लेकिन लोग अच्छे से जानते थे कि पार्थ कितना काबिल डॉक्टर है। अपने पेशेंट को बीच में छोड़कर वो कभी नहीं जाता था, इनफैक्ट काम के चलते उसे ठीक से सोने तक का टाइम नहीं मिलता था। वहीं दूसरी तरफ इशिका ने चारों तरफ देखा, वो जानती थी कि कौन से केमिकल का क्या इफेक्ट हो सकता है। इशिका ने उनमें से कुछ केमिकल्स उठाए और उन्हें इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें हमें बर्बाद नहीं करने दूंगी पार्थ रायचंद, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, इशिका ने धीरे से कहा। उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया, उसने अपने पेट पर हाथ रखा। इशिका जानती थी कि वो जो करने जा रही है उसके बाद न सिर्फ पार्थ का प्लान बल्कि उसकी जिंदगी भी खत्म हो सकती थी, पर वो अभिमन्यु पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आने दे सकती थी। इशिका ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने एक एक करके अभिमन्यु से जुड़े सारे लम्हे आने लगे। उनकी पहली मुलाकात के दौरान अभिमन्यु उसे देखकर बुरी तरह चिढ़ गया था, वो उससे दूर भगाने की कोशिश करता रहता था। लेकिन जब इशिका ने उनकी शादी को साबित कर दिया था तब अभिमन्यु का रवैया बदलने लगा। धीरे धीरे वो उसकी बहुत केयर करने लगा, अब वो उसे बेइंतहा प्यार करता था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो अभिमन्यु राजवंश, मैंने अपनी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं देखी थी, पर तुमने मुझे अपनाया, मुझे हर खुशी दी। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें एक बार फिर से बड़ा झटका देने जा रही हूँ, पर खुद को संभाल लेना। मैं जानती हूँ तुम संभाल लोगे, तुम्हारी इज्जत और कामयाबी पर दाग नहीं लगने दूंगी मैं, इशिका ने रोते हुए कहा। आखिरी वक्त में भी उसे अभिमन्यु का ही ख्याल था। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर वहां बड़ी माचिस से पूरी जगह में आग लगा दी। लैब के दरवाजे की तरफ एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि वहां कुछ एक्सप्लोसिव्स रखे हुए थे, जबकि अंदर का हिस्सा धीरे धीरे जल रहा था। इशिका अपनी तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, पर वो जानती थी कि ये उसके लिए आसान नहीं था। उसने उन दवाइयों और उस जगह को खत्म करने के लिए जिन केमिकल्स का इस्तेमाल किया था वे बहुत खतरनाक थे। आग बहुत जल्दी फैल गई थी, एक्सप्लोसिव्स होने की वजह से दरवाजा पहले ही जलने लगा था। वहीं गाड़ी में बैठा पार्थ बार बार इशिका को कॉल कर रहा था। इशिका ने कॉल रिसीव नहीं किया तो उसने गार्ड को कॉल किया। गार्ड वहां बाहर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसने जैसे तैसे कॉल रिसीव करके कहा, डॉक्टर साहब अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ है, वो मैडम जो आपके साथ आई थी वो अंदर ही रह गई, प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। गार्ड की बात सुनकर पार्थ को झटका सा लगा। उसने तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया। हालांकि वो लैब थोड़ा आउट ऑफ एरिया में बनी हुई थी, लेकिन आसपास एक तो और वर्किंग प्लेस थे। उन लोगों ने जल्द ही पुलिस, मीडिया और बाकी लोगों को कॉल किया। पार्थ जल्द से जल्द गाड़ी ड्राइव करके वहां जा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो खुद से बोला, ये तुमने क्या किया इशिका, मुझे बर्बाद करने के चक्कर में खुद की जान ले ली, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। कुछ ही देर में पार्थ वहां पहुंच चुका था। फायर ब्रिगेड आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, पर आग काफी ज्यादा लगी हुई थी। पार्थ दौड़कर अंदर जाने लगा तो उसे पुलिस ने रोक लिया। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते, आग बहुत ज्यादा लगी हुई है, एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा। आप मुझे रोक नहीं सकते, वो अंदर है, मुझे उसे बचाना होगा, पार्थ ने इंस्पेक्टर को धक्का देते हुए कहा। पार्थ अंदर जाने लगा, लेकिन आगे जाकर उसे दो कांस्टेबल ने रोक लिया। उनमें से एक ने कहा, हमारी टीम आग बुझाने के बाद उनकी लाश निकालने की कोशिश करेगी।
क्या मतलब है तुम्हारा, लाश निकालने की कोशिश करेगी? वो जिंदा है अभी, पार्थ ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर बोला। मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ सर, लेकिन अंदर आग बहुत तेज लगी है, हर एक चीज जलकर राख हो गई है। हमें नहीं लगता कि ऐसे में जो भी अंदर है वो जिंदा बच पाया होगा। आग बहुत बुरी तरह जल रही है, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, इंस्पेक्टर ने पार्थ को समझाया। मैं पिछले रास्ते से जाऊंगा, एक रास्ता पीछे भी बना हुआ है, पार्थ बोला और दूसरी तरफ जाकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। उस रास्ते पर आग बिल्कुल कम थी, ऐसा लग रहा था जैसे इशिका को भी उस रास्ते के बारे में पता था। तभी जैसे ही पार्थ ने दरवाजा खोला, उसे आगे इशिका जमीन पर गिरी हुई दिखाई दी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन धुआं होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो उसमें बेहोश तक हो गई थी। पार्थ के पीछे पीछे इंस्पेक्टर और बाकी टीम भी आ रही थी। इशिका, इशिका, पार्थ जल्दी से चिल्लाते हुए उसके पास आकर बैठा। उसने नब्स चेक की तो इशिका की सांसें बिल्कुल धीमी चल रही थीं। एक डॉक्टर होने के नाते वो समझ सकता था कि इशिका के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। फिर भी पार्थ ने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और दौड़ते हुए बाहर आने लगा। मीडिया ने पार्थ की गोद में इशिका को देखा तो वे तुरंत उसे पहचान गए। उन्होंने उन्हें शूट करना शुरू कर दिया। यहाँ एक लेबोरेटरी में लगी आग से पता चला है कि अंदर डॉक्टर मर्चेंट यानी इशिका राजवंश मौजूद थीं। आग काफी भयानक थी, उन्हें जो ले जा रहे हैं उनकी आंखों में आंसू हैं। तो क्या डॉक्टर मर्चेंट अब इस दुनिया में नहीं रही? हर तरफ यही खबर फैल रही थी। वहीं अभिमन्यु राजवंश राजवंश एम्पायर की मीटिंग रूम में बैठा हुआ था। अचानक पृथ्वी उसके पास आया और उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव बेहद दर्दनाक हो गए। उसकी आंखों से आंसुओं का कतरा बह गया और वो सब कुछ छोड़कर वहां से भागकर हॉस्पिटल जाने लगा। ओके, फिलहाल के लिए इतना ही। इशिका ने अभिमन्यु को तो बचा लिया, लेकिन खुद को दांव पर लगा दिया। देखते हैं अब इसका क्या नतीजा निकलता है। चलिए आप पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले चैप्टर पर मिलते हैं।